اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی.
This is VOA News via remote. I'm Diane Roberts. Sunday demonstrations continue for the third straight week in Washington, D.C., the United States' capital, and around the world. The violent clashes in London led to police arresting over 100 people after thousands of self-styled patriots backed by far-rights groups gathered in the central part of the city over the weekend. France has seen angry protests over alleged racism in the security forces over the last several days, some highlighting the death of a young black man in police custody in 2016. Those protests have been given additional impetus by the death in the U.S. of George Floyd, with thousands turning out in Paris Saturday for a new protest that ended with clashes against police. The Human Rights Watch said French President Emmanuel Macron should identify concrete reforms to end racism within the police. In the southeastern U.S. city of Atlanta, protesters gathered outside a fast food restaurant Saturday night, where an African-American man who was resisting arrest was shot dead by a police officer the night before. That officer has been fired and another put on administrative leave in the case. Protests also were held in the northwestern U.S. city of Seattle. Protests demanding justice and systemic reforms erupted across the United States after George Floyd died last month. A white officer, Derek Chauvin, pressed his knee into Floyd's neck for nearly 9 minutes, even as Floyd said he could not breathe. The United Nations Human Rights Council will face many important issues when its 43rd session opens Monday. One of the highlights of the week-long meeting will be an urgent debate on institutionalized racism in the United States, underlined by the killing of African-American George Floyd while in police custody. Geneva Director of Human Rights Watch John Fisher calls this a moment of reckoning for the United States. The session was suspended in March because of COVID-19. From Washington, this is VOA News. Protesters in New Orleans tore down a bust of a slave owner who left his wealth to build schools. Then they took what was left to the Mississippi River and rolled it into the water. Saturday's destruction is part of a nationwide movement to remove monuments to the Confederacy or with links to slavery. The police did not identify the bust, but local media said it was John McDonough. Upon his death, McDonough left a large portion of his money to New Orleans and Baltimore for schools, and many schools in New Orleans are named after him. The search engine giant Google said Sunday it would explore why the picture of Britain's World War II leader Winston Churchill disappeared from a top search result list of former UK prime ministers during controversy over his record on racism. Google said the photo's removal from its horizontal list atop search results for former British premiers was due to an automatic update and, quote, not purposeful, but apologized for any concern. Britain's World War II prime minister has become engulfed in controversy after a Black Lives Matter protest in central London last weekend led to his statue being defaced with the word racist. Worldwide, more than 430,000 people have died from COVID-19, more than 115,000 of them in the United States. The number of confirmed infections globally is more than 7.8 million, and in the U.S., more than 2 million. Brazil now has the second highest number of deaths, followed by the UK, Italy, France, and Spain. Brazil continues to have the second highest number of infections. China reported 57 new cases of the coronavirus Sunday, the highest daily figure since April, as concerns grew about a resurgence of the disease. A new cluster has been linked to a wholesale food market in South Beijing. Chinese authorities have locked down a lab and residential communities near the market, trying to stem a new outbreak of COVID-19. City officials say 45 workers at the market tested positive for the coronavirus, though they showed no symptoms. That was in addition to an early announcement of 7 people with symptoms who had visited or worked at the market. Spain's Prime Minister Pedro Sanchez said Sunday the country will open its borders to countries in the European Union's Schengen area June 21st. That's 10 days before previously announced. One exception, Portugal, where the border will open July 1st. Austria's economy minister said Sunday the country plans extra investment subsidies and tax breaks to help companies hit by the coronavirus pandemic. Companies that commit to investments in the next 6 months could get 14% of its back as a subsidy she told an Austrian national public service broadcaster. This comes ahead of a two-day cabinet meeting on more stimulus measures. By remote, Diane Roberts, VOA News.
السلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں اور طالب علم گھروں سے ہی آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں اسکول کی سطح پر جاری آن لائن تعلیم کے بارے میں کہ یہ سلسلہ کس انداز میں جاری ہے اور مختلف سطح کے طلبہ و طالبات، ان کے اساتذہ اور والدین اس آن لائن تعلیم کے دوران کن تجربات سے گزر رہے ہیں اور کس طرح یہ ممکن بنا رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے دوران تعلیم کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح جاری رہ سکے. تو پروگرام شروع کرتے ہیں لاہور کے گرامر اسکول کے استاد سے جو اے لیول کے طالب علموں کو آن لائن پڑھا رہے ہیں. نام ہے ان کا شہباز احمد. السلام علیکم شہباز احمد صاحب.
وعلیکم السلام.
شہباز صاحب کچھ بتائیے کہ کیسا جا رہا ہے یہ تجربہ آن لائن پڑھانے کا؟ پہلے بھی آپ کا کوئی سلسلہ جاری تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کے دوران ہی یہ سلسلہ شروع ہوا؟
نہیں، اس سے پہلے میں نے پڑھایا تھا کچھ اسٹوڈنٹ کو یو کے میں، تو اس لیے تھوڑا سا میرا ایکسپیرینس تھا اس کے بارے میں. اور اب چونکہ جب یہ یکدم شروع ہوا تو اس میں پھر آپریٹرس وغیرہ خرید لیا اور ان کو پڑھانا شروع کیا، تو کافی حد تک بہتر ہے کیونکہ اس سچویشن میں میرا خیال ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا، دس از دا بیسٹ سولوشن کہ ہم بچوں کو کانسیپٹ سے انٹروڈیوس کرواتے رہے اور ان کو ایجوکیشن کی طرف مائل کرتے رہے.
تو کون سے سافٹ ویئر، کون سا چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں پڑھانے کے لیے؟
تو زوم استعمال کر رہا ہوں، ٹیبلٹ میں وہ نیٹ لنکس ہے، اس کی اسکرین ہوتی ہے، اس پہ لکھ کے زیادہ تر بچوں سے انٹریکشن بھی رہتی ہے، ان کے مائک آن ہوتے ہیں، سم ٹائم وہ ویڈیو بھی آن کر لیتے ہیں، اگر کسی کو کوئی کوسچن پوچھنا ہے تو وہ اپنا ہینڈ ریز کرتا ہے اور پھر میں اس سے ویڈیو پہ لے کے تو اس سے ڈسکشن بھی ہو جاتی ہے.
تو روزانہ کلاسز ہوتی ہیں کہ ہفتے میں کتنی بار آپ کلاسز لے رہے ہیں؟
اکارڈنگ ٹو ٹائم ٹیبل کا جو ہمارے انسٹیٹیوشن میں ٹائم ٹیبل اسٹوڈینٹس کو دیا گیا اس کے مطابق ہماری تین کلاسز منتھ میں ہوتی ہیں اور وہ کوئی 1 hour 20 minutes 10 minutes تک ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں.
مسائل کیا پیش آتے ہیں خاص طور پر؟
مسائل اس میں جو ویک اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں ذرا ان کا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ انٹریکٹ نہیں کرتے، وہ کوسچن نہیں پوچھتے، پھر ہمیں بھی کچھ ان زیادہ سچویشن کلیئر نہیں ہوتی کہ اس وقت وہ کنسنٹریشن سے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. ظاہر ہے جو ایک کلاس روم کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے تو اس میں تو ہم ہر اسٹوڈینٹ تک اپروچ کرتے ہیں اور ان سے بات کر کے ان کو موٹیویٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی موٹیویشنل پوائنٹ ان کو بتاتے رہتے ہیں تاکہ وہ ایک تو جو ڈپریشن پھیلا ہوا ہے، فرسٹریشن پھیلی ہوئی ہے، اس سے نکلیں اور اس کے بعد یہ کہ ان کو پھر اس طرف مائل کریں کہ یہ جو ٹائم ہے ان کو ملا اس میں وہ اپنی تعلیمی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، ان کو جو پراپر طریقے سے کرتے رہیں سو دیٹ کہ ان کا تعلیمی حق نہ ہو.
تو اب آپ اوور آل کیا دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم پرولونگ کرے گا تو اساتذہ کے لیے کیا مسائل ہوں گے اور اسٹوڈینٹس کے لیے کیا مسائل ہوں گے؟
اگر یہ سسٹم پرولونگ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ آن لائن کلاسز ان کو چلاتے رہنا چاہیے سو دیٹ کہ بچوں کا ایجوکیشنل ایئر جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، بچوں کی لرننگ ہوتی رہے. باقی پرابلم صرف اتنی ہے کہ جو ایکسٹرنل ایگزام ہوتا ہے جیسے اے لیول کا کیمبرج یونیورسٹی ایگزام دیتی ہے تو وہ مسائل ضرور آ رہے ہیں، بٹ اس دفعہ تو انہوں نے چونکہ جو پریویس ایگزام ہم نے لیے تھے آن دی بیسس آف دیٹ ہم نے ان کا ریزلٹ بنا کے بھیج دیا، ان کے وہ پریڈکٹڈ گریڈ، تو اس کے بیسس پہ ان کا ریزلٹ بن جائے گا. لیکن اب جو نئی کلاسز آئیں گی چونکہ ان کی انٹریکشن ہمارے ساتھ اس طرح ون ٹو ون تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ آن لائن ہم ان کو گائیڈ لائن تو دیتے رہیں گے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ستمبر اکتوبر تک یہ سلسلہ ختم ہو جائے اور آن لائن کلاسز والا سلسلہ پھر منقطع ہو جائے گا. बट मैंने एक चीज इसमें सीखी है, ये इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि अगर हम इसको कंटिन्यू भी करते हैं तो बाद में भी बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना रात को या किसी भी लम्हे जब बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है तो ये काफी फायदा दे सकता है।
यानी ये एलिमेंट जारी रहेगा इंटरेक्शन का, वन टू वन जो इस वक्त हो रही है वो आइंदा जब भी स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो असातिज़ा के लिए ये आसानी रहेगी और स्टूडेंट्स के लिए भी।
मतलब एक एडिशनल सिलसिला शुरू हो जाएगा साथ बच्चों की गाइडलाइन का, उनको हम गाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा फार ऑफ एरिया में है और वो पढ़ना चाहता है, बड़े शहरों की स्टैंडर्ड एजुकेशन हासिल करना चाहता है या अच्छे टीचर से पढ़ना चाहता है, तो आई थिंक उन लाखों के लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित होगा।
और बहुत सारे स्कूल जो शहरों के स्कूल हैं वो देहात के बच्चों को एजुकेशन दे सकेंगे, जैसा कि कॉलेजेस हैं, जैसे कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग,
जैसे यूनिवर्सिटियों में होता है डिस्टेंस लर्निंग होती है। ये आप हमारे इधर डम्प यूनिवर्सिटी है, ये यूके की यूनिवर्सिटियों, अमेरिकन यूनिवर्सिटियों के लेक्चर्स बच्चों को डिलीवर करते हैं और इस तरह बच्चों को एक एक्सपोजर मिल जाता है रहकर अच्छे टीचर्स का, तो ये सिचुएशन काफी फायदेमंद हो सकती है।
तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के स्कूलों में ऑनलाइन लर्निंग का, ऑनलाइन एजुकेशन का कुछ ना कुछ अमल दखल अब शुरू हो सकता है या हो जाना चाहिए कोरोना के बाद भी?
जी, कोरोना के बाद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि काफी हद तक लाहौर में मैंने देखा है कि हमारे खासे टीचर्स जो हैं वो अच्छे ट्रेंड हो गए हैं और बड़ा प्रॉपर तरीके से। मेरा अपना बेटा ए लेवल में पढ़ रहा है और जो उसको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के टीचर्स हैं और केमिस्ट्री के, वो उनको बड़ी प्रॉपर गाइडलाइन मिल रही है। मैं उसको मॉनिटर करता रहता हूँ और वो उसमें प्रोग्रेस हो रही है और बड़ा सीरियसली वो क्लासेस अटेंड कर रहा है।
बेहद शुक्रिया शहबाज अहमद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप केमिस्ट्री के उस्ताद हैं ग्रामर स्कूल लाहौर में, तालिबात को भी पढ़ा रहे हैं और तलबा को भी पढ़ा रहे हैं ए लेवल के स्टूडेंट्स को। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आप सुन रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में अब हम आपको मालूमात फराहम करेंगे कि पाकिस्तान में जो स्कूल के बच्चे हैं वो इस वक्त किस तरह ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उन्हें क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमजद हुसैन जो साइंस के टीचर हैं, हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं मुल्तान से, और ये एक स्कूल मुख्तलिफ स्कूलों में ये पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी कुछ एजुकेशन दे रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं पाकिस्तान में स्कूल की एजुकेशन के कोरोना लॉकडाउन के दौरान। अस्सलाम वालेकुम अमजद हुसैन साहब। अमजद साहब, कुछ बताइए अपने बारे में कि आप आजकल क्या पढ़ा रहे हैं, किन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, किस तरह पढ़ा रहे हैं?
मैं विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे एलजीएस ब्लूमफील्ड और जिनाइस में पढ़ाता हूँ, और हमारी कुछ क्लासेस हम ओ लेवल्स और ए लेवल्स को पढ़ाते हैं, तो जूम पे या गूगल क्लासरूम को यूज करते हुए हम आजकल टीचिंग कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं हमें वो थोड़ी सी नेट कनेक्शंस या बैंडविड्थ के वजह से हैं, स्पेशली इवनिंग आफ्टरनून टाइम में जो लोड नेट पे होता है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए हमें अपनी क्लासेस मॉर्निंग में प्लान करनी पड़ती हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी सेम यही प्रॉब्लम्स हैं कि उनके भी नेट डिसकनेक्शंस होते हैं और टीचर्स के लिए भी ये सेम प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो हायर क्लासेस हैं 9th, 10th grade या 12th grade या जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनकी क्लासेस मोस्टली जूम पे लाइव या गूगल क्लासरूम को यूज करते हुए हो रही है।
तो ये बताइए अमजद हुसैन साहब के ये स्टूडेंट्स भी ना तो पहले से तैयार थे, ना उनकी कोई ट्रेनिंग थी कि किस तरह ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है, ना ही टीचर्स ट्रेनिंग थी इस बारे में, तो कैसे आप समझते हैं कि ये कोई कामयाब तरीका है इस वक्त एजुकेशन देने का?
हम इसको 100% कामयाब तो नहीं कह सकते, बिकॉज जो आपने कहा ट्रेनिंग नहीं थी, तो वो ट्रेनिंग वाकई नहीं थी, और उसके लिए बहुत सारे इवन के जो अरेंजमेंट्स हैं, जो सेटअप्स हैं, वो भी ऐसे नहीं थे। जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए रिक्वायर्ड सेटअप है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, और लॉकडाउन की वजह से कोई नई परचेज और नई अरेंजमेंट पॉसिबल भी नहीं थी, तो इसलिए स्टार्ट में बहुत डिफिकल्टी हुई। अब जो लॉकडाउन थोड़ा सा ईज आउट हुआ है, तो उसकी वजह से अब कुछ अरेंजमेंट्स हमारे पास और जनरली मतलब सब लोगों के पास कुछ इम्प्रूव हो चुके हैं, और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बहुत सारी नेट से ली गई कि कैसे बेटर किया जा सकता है। जो टूल्स हैं वो भी हमने कुछ लर्न किए पिछले 1-2 months में, तो अब इट्स गोइंग बेटर। अदरवाइज मार्च अप्रैल तक ये वाली कोई इतनी सक्सेसफुल सिचुएशन नहीं थी।
और दूसरे है कि क्या सभी बच्चों के पास लैपटॉप्स मौजूद हैं घर में, किस तरह क्या मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा मोड इस्तेमाल होता है उनको सिखाने के लिए?
कुछ जो एलीट क्लास स्कूल्स हैं या अपर क्लास स्कूल्स हैं, मैं भी जिनमें से 2-3 में पढ़ाता हूँ, वहां पे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक एक घर में एक से ज्यादा लैपटॉप्स या जो आईपैड या और डिफरेंट जो टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं, फोन भी, मतलब लार्ज स्क्रीन फोन्स भी हैं जिसको यूज करते हैं कुछ बच्चे। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो थोड़े से लो क्लास पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें ये ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके पास नेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी या इस स्पीड की अवेलेबल नहीं थी नेट फैसिलिटी के, जो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड किया जा सके। उनमें फिर ज्यादातर स्कूल्स ने ऑप्ट भी ये किया था कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ताकि वो जो नेट की स्पीड है वो इंटरफेयर ना करे, तो वो उस तरह की सिचुएशन भी रही कि रिकॉर्डेड लेक्चर, या जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उनकी तरफ से जो टीवी चैनल एक टेली स्कूल के नाम से चलाया गया, जिसमें कोई 8-10 hours क्लासेस ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स वहां पे वो होती हैं एक टाइम टेबल के हिसाब से, तो उसने भी काफी हेल्प किया। वो टेलीस्कूल ज्यादा हेल्पफुल इसलिए रहा कि वो एक टीवी चैनल है, और टीवी चैनल तक जो रसाई है या एक्सेस है वो ज्यादा इजी है, ज्यादा पब्लिक के लिए है, तो वहां पे नेट फैसिलिटी या कोई कंप्यूटर लैपटॉप होना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो टीवी पे ही आ जाता है और वो टाइम टेबल के हिसाब से चलता है। तो और सारी क्लासेस के लेक्चर्स वहां पे क्लास 1-2 से लेके और 12th ग्रेड तक वहां पे लेक्चर्स होते हैं।
लेकिन वही बात कि अगर एक दफा उन्होंने लेक्चर देख भी लिए तो क्या उसकी क्या उसका मयार क्या है, वो इंटरेक्शन नहीं हो रही, वो याद कैसे करेगा, उसके पास उसकी कोई सबूत है, डाउनलोड कर सकता है?
वो एक वेबसाइट अवेलेबल है sabak.com से, जहाँ पे वो लेक्चर बाद में भी लिए जा सकते हैं, मतलब अगर आपने वो लेसन उस चैनल पे उस टाइम मिस कर दिया। लेकिन जो इंटरेक्शन वाला प्रॉब्लम है वो सब जगह फेस करना पड़ रहा है, वो हमें जो हम जूम पे पढ़ा रहे हैं उसमें भी, और जो टेली स्कूल है उसको भी वो फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि जो इंटरेक्शन है और जो स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स को जो इंक्वायरी उनसे करना और जो जो लर्न उन्होंने कर लिया उस से, वो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी तक हमारे पास ऐसी अरेंजमेंट नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को फॉलो कर सके, जो फॉलो अप है वो ज्यादा डिफिकल्ट।
तो क्या अगर ये सिस्टम अगर ये प्रोलॉन्ग करता है लॉकडाउन, तो फिर क्या उनके इम्तहान का क्या बनेगा, उनके टेस्ट का क्या बनेगा, किस तरह आप जज करेंगे, किस तरह उनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे?
अभी जो क्लास 8-9 तक तो उन्होंने जो प्रमोशन है वो प्रीवियस रिकॉर्ड की बेस पे ज्यादातर जगह पे अप्लाई हो रहा है, और कुछ स्कूल्स के जो एग्जाम्स हैं वो डिले हो चुके हैं। अब देखें अगर ये सिचुएशन COVID-19 की कुछ इम्प्रूव करती है तो उसके बाद वो एग्जाम्स होंगे, अभी तक उनके बारे में कोई फाइनल नहीं।
बेहद शुक्रिया अमजद हुसैन साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर।
वॉशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील और आप सुन रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में अब हम गुफ्तगू करते हैं शकील अहमद से, जो मुल्तान के जिना हाइज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के उस्ताद हैं और तैयारी में हैं कि अपने स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन कुछ पढ़ा सकें अपना सब्जेक्ट। तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त इनके स्टूडेंट्स की। अस्सलाम वालेकुम शकील अहमद साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
شکیل صاحب کچھ بتائیے کہ ملتان میں خاص طور پر جو بچے ہیں اسکول کے ان کی تعلیم کیسے جا رہی ہے اور کیا مسائل ہیں ان کو بچوں کو اور کیا مسائل ہیں ٹیچرز کو؟
جی جی یاسمین, آج جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیشہ سے بچوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے اور ٹیچرز کے لیے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو اس کا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ خاص طور پہ اس پینڈیمک کے آؤٹ بریک میں جب لاک ڈاؤن ہے تو بچے اسکول نہیں آ پا رہے اور اسکول والے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو آن لائن ڈفرینٹ میتھڈ سے نا ایجوکیٹ کریں, لیکن جو اس کا ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ فزیکل انٹریکشن نہیں کر پا رہے اپنے پیئرز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, وہ گھل مل کے جیسے گیمز کھیلتے ہیں. اور یہ مینٹل ایک ریسپائٹ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ایجوکیشن کا یہ بھی پارٹ ہوتا ہے کہ کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں, اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہی بچے کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو اپنے آپ کو یا اس کو انڈرسٹینڈ کر پاتے. تو ٹیچرز تو اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں, کوئی زوم یوز کر رہا ہے, کوئی مائکروسافٹ ٹیم پر یوز کر رہا ہے, کوئی واٹس ایپ یوز کر رہا ہے, لیکن میری فیلنگ یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کوآپریٹو یا گروپ لرننگ, تو اس کا وہ ایک انوائرمنٹ نہیں آن لائن ٹیچنگ میں سیٹ ہو پا رہا. تو امید ہے کہ جو ہے جیسے جیسے یہ لوگ اور اس میں لرن کریں گے, کیونکہ یہ سارے ٹیچرز کے لیے خاص طور پہ پاکستان کے اور بھوٹان کے اس پارٹ کے لیے بھی ایک نیا ایکسپیرینس ہے کہ آپ کو کیسے آن لائن میکسیمم امپارٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اتنی ٹیکنالوجی ڈیولپ تو نہیں ہے. تو بہرحال پھر بھی اپنی سی کوشش جاری ہے.
تو کیا آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں آن لائن ایجوکیشن کا؟
اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اپرچونٹی کے طور پہ بھی ہمیں اس کو لینا چاہیے, اور اس نے ہمیں ایک نیا موڈ آف ایجوکیشن جس کو جو پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا لیکن اتنا پریفریبل نہیں تھا, تو اب اس میں بھی ہمیں نا اس کی امپورٹینس جو ہے وہ ریئلائز کرا رہا ہے کہ ہمیں اس کو بھی آپٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جو فیوچر چیلنجز ہیں ان چیلنجز میں ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو یہ والی ایک جو چیز ہے یہ بھی بہت امپورٹینٹ ہے, اس سے ٹیچر بھی اپنے آپ کو ایکسپرٹ کریں گے, بچے بھی یوز ٹو ہو جائیں گے. تو میرا خیال میں کہ فیوچر میں اس کی اگر پینڈیمک نہیں بھی ہوگی تو پھر بھی بچے اس سے استفادہ کریں.
بہت شکریہ, بہت شکریہ شکیل احمد صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جناح ہائز میں اسکول ملتان میں آپ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے استاد ہیں اور آن لائن بچوں کو پڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل, آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام. اور اب ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک دو بچوں کی والدہ ہیں, لاہور سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر ہیں. ان کے بچے بھی آن لائن اس وقت پڑھ رہے ہیں, تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو والدہ ہیں اپنے بچوں کو کس طرح آن لائن پڑھانے میں مدد کر رہی ہیں. نام ہے ان کا سارا عامر, تو بات کرتے ہیں. السلام علیکم سارا عامر صاحبہ.
وعلیکم السلام.
سارا کچھ بتائیے کہ آپ کے بچے کن کن عمروں کے ہیں اور کہاں پڑھتے ہیں اور کن کن کلاسز میں ہیں؟
جو میرا ایلڈر بیٹا ہے he is in grade 4 and he is 10 years old. اور جو younger son ہے he is only 3 years old. تو اب اس کا کمنگ ایئر تھا ان فور پلے گروپ, وہ بھی اس سچویشن میں نہیں وہ چیز ہو سکی.
ٹھیک ہے, तो ये वो किस स्कूल में पढ़ता था और उनके स्कूल वालों ने क्या ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह शुरू की और किस तरह आप अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाने में मदद कर रहे हैं पढ़ने में?
जो बेटा मेरा है वो पढ़ता है LGS लाहौर ग्रामर स्कूल लाहौर में, और इस तरह है कि उन्होंने पहले जैसे इश्यूज क्रिएट हुए तो शुरू में उन्होंने कुछ हम लोगों को ऐसे कहा कि आप प्लीज आइए और कलेक्ट कर लीजिए कोई पेपर वर्क में, तो जो आप उनको A4 शीट्स पे आप वो डन करवा सके काम। चले ठीक है, हमने वो चीज इस तरह से कर ली, ठीक है। लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस का जो उन्होंने किया है वो थोड़ा सा ऐसा था कि कुछ चीजें बच्चे अटेंड नहीं कर पाते, तो वो बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि आपको पेरेंट को बैठना पड़ रहा है बच्चों को, और एक ये होता है कि एक रूटीन होती है स्कूल गोइंग बच्चों की, दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो चीज बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है कि बच्चों की क्लासेस हो रही है कोई 2 o'clock हो रही है इन द आफ्टरनून, तो वो एक रूटीन बड़ी डिस्टर्ब हो गई है जो अर्ली स्कूल गोइंग बच्चों की होती है, वो चीज बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो एक मैं ये समझती हूँ कि उनकी लाइफ में जो बड़ी अच्छी चीज थी एक डिसिप्लिन था, वो चीज सबसे पहले तो वो मेंटेन नहीं हो पा रहा क्योंकि बच्चे हम लोग उनकी बात में नहीं उस तरह से फॉलो करते, तो ये मुझे एक चीज ये भी है। और दूसरा वो बड़े कंसंट्रेशन का लैक होता है उस टाइम क्योंकि बच्चे बिल्कुल उसको अटेंटिवली नहीं कर ले रहे होते, और एक क्लास चल रही है तो उसमें कोई टीचर कोई उनके साथ कोई फन नहीं कर सकती, कोई कुछ कुछ भी ऐसा नहीं होता जो एक्स्ट्रा करिकुलर हम एक लेसन के अंदर बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कर सकते हैं, तो वो सब चीजें नहीं होती क्योंकि एक टीचर एक साइड पे होते हैं, एवरीबडी इज लिसनिंग टू हर, और इस तरह से वो ले रहे होते हैं क्लास की तरह, तो वो चीजें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं, वो उस तरह से उसको इंटरेस्ट से नहीं कैरी करते। इवन के वो ज्यादातर अपने वो माइक्स को और हेडफोन्स को सेटल करने में लगे रहते हैं, तो वो चीज इतनी देर में वो लेक्चर भी प्रोसीड कर जाता है, और फिर पेरेंट्स को उनको बहुत मुश्किल से टैकल करना पड़ता है उनको अप टू द मार्क लाने के लिए। मैं ये समझती हूँ टीचर तो एक टेप की तरह बता के चले जाते हैं लेकिन पेरेंट्स को उनको लेके चलना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो वो हमें बहुत बर्डनाइज हो चुके हैं हम इस सबसे।
आपके आपका बेटा इस वक्त अगर आपके पास है तो उससे बात कराइए, हम उससे पूछते हैं कि वो किस तरह ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है आज।
प्लीज बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या नाम है आपका?
माय नेम इज अली हुसैन एंड माय क्लास इज फॉर रेड।
वाह वाह, बड़े बड़े तेज बच्चे लग रहे हैं आप तो भाई, इसलिए कि अब आप आजकल कंप्यूटर पर पढ़ रहे हैं। ठीक, तो बताइए कंप्यूटर पर कैसे पढ़ रहे हैं अली हुसैन?
लिंक भेजते हैं
अच्छा,
फिर ऑनलाइन क्लास होती है।
अच्छा फिर
बहुत इंटरेस्टिंग रिवाइज करवाती हैं टीचर, टेस्ट भी ले लेती हैं, क्विज होते हैं मेरे, मैं अच्छा ही करता हूँ मतलब फर्स्ट के करीब तक।
फर्स्ट के करीब यानी सेकंड थर्ड तक आप आ जाते हैं तो। लेकिन स्कूल में जाकर पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता था कि कंप्यूटर पर पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है ऑनलाइन?
स्कूल में ज्यादा मजा आता है पढ़ने
क्यों?
में,
अब तो ज्यादा मजे मजे नहीं, सारा दिन घर में रहते हैं अम्मी के साथ, खाते हैं पीते।
बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके साथ हम खेलते भी हैं।
हाँ, तो मुश्किल क्या होती है जब आप पढ़ते हैं तो? सबसे मुश्किल आपको क्या लगता है, किस तरह आपको? अब अम्मी हर वक्त आपके साथ रहती है कि आपको खुद भी आ गया ऑनलाइन पढ़ना?
मेरी मम्मा हेल्प करती हैं मतलब
क्या?
सब्जेक्ट्स में हेल्प करती हैं, अगर ना कुछ समझ आ रहा हो तो फिर वो हेल्प कर देती हैं।
बेहद शुक्रिया अली हुसैन, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आप सुन रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम, और अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक वालिदा से जो अपने छोटे छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रही हैं। नाम है इनका जवेरिया उबैद। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया उबैद।
जी वालेकुम अस्सलाम।
इस्लामाबाद से हैं आप या पिंडी से हैं हमारे साथ?
जी इस्लामाबाद से, मैं आपके साथ।
तो कुछ बताइए जवेरिया कि आपके कितने बच्चे हैं और उन बच्चों को आजकल घर में आप वैसे तो बतौर वालदा भी कंट्रोल कर रही होंगी लेकिन उनको पढ़ा भी रही हैं तो ऑनलाइन पढ़ाने में आपको क्या मुश्किल पेश आ रही है और उन बच्चों को क्या मुश्किल पेश आ रही है?
आजकल मैं उन्हें घर पर ही पढ़ा रही हूँ, खुद पढ़ा रही हूँ। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो उनको जो सिलेबस दिया जा रहा है बच्चों को, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं तीनों ना, जो मेरा सबसे बड़ा, मेरे माशाल्लाह तीन बेटे हैं, और जो सबसे बड़ा बेटा है वो 1 क्लास में है और वो 7 इयर्स का है, और जो दूसरा बेटा है वो 5 इयर्स का है और वो है केजी में, और जो उससे छोटा है वो उसने अभी स्टार्ट लिया है, वो पीजी में है।
ठीक। तो किस किस
जी
सबको आप पढ़ाती हैं या सबकी तालीम जो है ऑनलाइन है इस वक्त?
जी सबकी ऑनलाइन है, तो अभी सिर्फ ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम होता है कि वो एक जगह पर फोकस होकर नहीं बैठ सकते लैपटॉप पर, कि वो बैठते नहीं है एक टाइम में फोकस होके। वैसे तो घर में तो मैं उन्हें आराम से पढ़ा लेती हूँ, कोई इशू नहीं होता। जो स्कूल से उनकी जो उनका सिलेबस है वो वीकली मंथली वो हमें दे दिया जाता है, तो उसको हमने कवर अप करना होता है एक टाइम पीरियड में। इसके अलावा इनके स्कूल में ये है कि वो छोटे छोटे से वीडियोस बना के हर चैप्टर की, हर टॉपिक्स की, वो बच्चे देखते हैं, उससे भी बच्चे काफी कुछ सीख रहे हैं।
पढ़ा आपने, आप खुद कितना?
मैंने एमसीएस किया हुआ है।
तो आप तो हैं ही कंप्यूटर साइंस की एक्सपर्ट,
जी,
तो
तो
फिर
शायद इसी वजह से मुझे कोई इतना ज्यादा इश्यू नहीं आ रहा है बच्चों को पढ़ाने में, बच्चे भी आराम से पढ़ लेते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है कि जो छोटा, सबसे छोटा मेरा बेटा है ना, वो जरा फोकस नहीं कर सकता ऑनलाइन बैठ कर, तो वो मैं उसको अलहदा से फिर बैठ कर उसे पढ़ा देती हूँ।
तो असातिज़ा जो है आप क्या समझती हैं उनका इस वक्त क्या रोल है? क्या वो सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं? कौन सा सॉफ्टवेयर आप लोग इस्तेमाल करते हैं? कैसे ऑनलाइन जाते हैं बच्चे?
जी व्हाट्सएप पर भी उनकी वीडियोस बहुत ज्यादा अपलोड होती हैं और वो वीडियो कॉल करते हैं, इंस्टाग्राम से भी उनके छोटे छोटे स्नैप शॉर्ट्स होती हैं। डिफरेंट दोनों मेथड जो है, सोर्स जो है, वो यूज किए जा रहे हैं इनके स्कूल में ना, और मैं तो इनके स्कूल से बहुत सेटिस्फाई हूँ। बड़ा अच्छा गाइड करती हैं, आपको प्रॉपर हर वीकली आपको रिस्पॉन्ड भी दिया जाता है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है ना वो भी ये मैसेजेस हमें सेंड कर देते हैं कि अब आपने बच्चों को, जैसे रमजान मुबारक था और ईद थी और कोरोना वायरस से रिलेटेड था, कि आपके बच्चे इस वक्त क्या सोच रहे हैं, पैगाम मैसेजेस कैसे दें आप दूसरों को। दूसरा के शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस भी हम बच्चों की बनाकर स्कूल सेंड कर रहे थे और वो फिर अपलोड कर रही थी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कि इससे बच्चे भी इंगेज रह जाते हैं और उनकी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है वो भी हो रही है साथ साथ।
तो आपके इसका मतलब कि आपके जो बच्चे हैं वो इस वक्त कोई ज्यादा परेशान नहीं है स्कूल ना जाने से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि स्कूल जाएं, तो आपके बच्चे खुश हैं?
नहीं, ये घर में खुश तो है लेकिन एक जो एक एनवायरनमेंट और माहौल जो एक स्कूल में बच्चा सीखता है वो चीज हम घर में तो अब भी बच्चों को नहीं प्रोवाइड कर सकते ना। अब जो इस तरह से जो अब हमारा एनवायरनमेंट जैसा हो गया है, तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना है। बच्चे जिस तरह से, अब हम बच्चों का टाइम भी वेस्ट ना हो तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी, इनका स्कूल भी, कि बच्चों का जो है वो टाइम वेस्ट ना हो, बच्चे जो है वो अच्छा पढ़ सके, जो उनका पढ़ाई का खर्च हो रहा है, जो वेस्ट हो रहा है टाइम, वो उसको हम थोड़ा सा कवर अप कर सकें। लेकिन जो स्कूल में बच्चा जाकर खुद सीखता है अपनी टीचर से, अपने, वैसे मैं बच्चों को उस तरह से नहीं पढ़ा सकती जिस तरह उनके स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व कर दूं।
तो आप ये समझती हैं कि आपके बच्चे सब मेंटली भी कोई फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं हो रहे इतने दिन तक घर में रहकर, या कोई और परेशानी उन्हें नहीं?
लिटिल बिट है, थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है कि हम उन्हें कह सकें नहीं, क्योंकि वो इस चीज को समझते हैं कि बाहर जो है वो एक सिचुएशन ऐसी हो गई है। मेरा बड़ा बेटा जो है ना, माशाल्लाह, वो इस सिचुएशन को समझता है, उसे पता है कि जो है बाहर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हमने अपने आप को सिक्योर रखना है हम
अच्छा,
सब ने।
ठीक है। बेहद शुक्रिया जवेरिया उबैद, आपने बड़ी तफसील से बताया कि इस वक्त आपके बच्चे किस तरह ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन जाहिर है कि माओ की हिदायत और माओ की गाइडेंस के बगैर वो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते। बेहद शुक्रिया,
जी जी बिल्कुल,
बेहद शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए
थैंक
वक्त
यू।
निकाला।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل. آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام. اس پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ان طالب علموں سے جو اس وقت آن لائن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, اور ان والدین سے جن کے بچے آن لائن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, اور ان اساتذہ سے جن کے اسٹوڈنٹس آن لائن پڑھ رہے ہیں اور جنہیں وہ آن لائن پڑھا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک طالبہ اسلام آباد سے موجود ہیں, ہمنا ناز ان کا نام ہے, تو ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ہمنا ناز.
وعلیکم السلام.
ہمنا, آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں, کون سے اسکول میں پڑھتی ہیں اسلام آباد میں؟
میں آٹھویں جماعت میں پڑھتی ہوں نیپال کے انٹرنیشنل امریکن اسکول میں.
تو نیپال کے اسکول میں پڑھتی ہیں, لیکن اس وقت آپ کیونکہ پاکستان میں ہیں تو آپ کی ایجوکیشن ابھی جاری ہے اور آپ آن لائن اپنے نیپال والے اسکول کے لیے پڑھ رہی ہیں, ٹھیک؟
جی.
اچھا, تو کیسے پڑھتی ہیں, کیا آپ کو پہلے سے آتا تھا آن لائن پڑھنا, کیا آپ نے یہاں سیکھا یا آپ کے اساتذہ نے آپ کو سکھایا؟
میں نے پہلے کبھی بھی آن لائن اسکولنگ نہیں کی, مگر ہم لوگوں کے اسکول والوں نے ہمارے لیے میٹنگز ارینج کی ہوئی تھیں جن میں وہ ہمیں بتاتے تھے کہ ہم کیا کریں, کس طرح آن لائن اسکول کنٹینیو کریں, اور کچھ رولز اور طریقے کہ ہم کیسے اسے مینٹین کریں.
اچھا, تو پھر آپ نے وہ سیکھ لیے.
میں آن لائن پڑھتی ہوں اپنے گوگل کلاس روم کی مدد سے, جس میں میری ٹیچرز میری اسائنمنٹس کریٹ کرتی ہیں اور وہاں سے ہم لوگوں کو وہ اسائنمنٹس کمپلیٹ کر کے سبمٹ کرنی ہوتی ہیں.
تو آپ ڈیلی کا ڈیلی سبمٹ کرتی ہیں, کتنی کلاسز لیتی ہیں ایک دن میں؟
ہم لوگوں کی آن لائن کلاسز مطلب کہ جو فیس ٹو فیس میٹنگز ہوتی ہیں وہ ہفتے میں دو دفعہ ہوتی ہیں, مگر جو ڈیلی ورک ہے وہ ہر روز ٹیچر دیتے ہیں جو ایک ہفتے بعد ڈیو ہوتا ہے, اور اسے آپ ٹائم لمٹ میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو.
تو کیا فرق لگتا ہے جب آپ خود پڑھتی ہیں اور وہاں تو ٹیچرز آپ کو پڑھاتے تھے, تو کیسے مشکل تو نہیں پیش آتی؟
آن لائن اسکول میں زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ پریشر اور برڈن زیادہ ہے پڑھائی کا, کیونکہ آپ جب اسکول جاتے ہیں آپ کے پاس اپنے فرینڈز ہوتے ہیں, کوئی بات کرنے کو ہوتا ہے, وہ آپ کی ہیلپ بھی کر دیتے ہیں, وہ سمجھتے بھی ہیں, آپ ان کے ساتھ مل کے بھی کام کر سکتے ہیں, ٹیچر سے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ تھوڑا مسئلہ ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں, اور جب ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو کسی پیرنٹ سے پوچھنا پڑتا ہے یا اپنے ٹیچر کو ای میل کرنی پڑتی ہے, تو اس میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے.
تو کام جو بھی کام ہوتا ہے اس میں وقت زیادہ لگتا ہے, تو آپ زیادہ گھنٹے پڑھتے ہیں؟
کام کمپلیٹ کرنے میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے نارمل ٹائم سے.
ٹھیک, تو اور کیا انٹرنیٹ کا پرابلم تو نہیں ہے آپ کے یہاں اسلام آباد میں؟
انٹرنیٹ کا بھی ایک پرابلم ہے کبھی کبھار, جب ہماری گوگل میٹس پہ کلاس ہوتی ہے, جب پوری کلاس فیس ٹو فیس بات کرتی ہے ویڈیو کال پہ, تو تب انٹرنیٹ کا اگر مسئلہ ہوتا ہے تو بات کبھی ٹیچر کی سمجھ نہیں آتی, کٹ جاتی ہے کال, تو اس میں بڑا پرابلم ہوتا ہے. پھر بعد میں کسی سے پوچھنا پڑتا ہے کہ ٹیچر کیا کہہ رہے تھے, کیا ہوا تھا, تو اس میں بھی پرابلم ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے.
تو اور کیا مسائل پیش آتے ہیں؟
بس مسائل یہی ہیں, اپنے لائک اپنے کلاس فیلوز سے بات کم ہوتی ہے یا ان کی ہم ہیلپ کم کر دیتے ہیں, مطلب جس طرح ہم پہلے انگیجمنٹ کرتے تھے اپنے فرینڈز اپنے کلاس ٹیچرز کے ساتھ, اپنے فرینڈز اور کلاس میٹس کے ساتھ, وہ اب نہیں ہے کیونکہ ہم بہت مختلف جگہوں پہ رہ رہے ہیں, بس اسکول کے لیے بات ہوتی ہے اور کبھی اسائنمنٹس کے لیے ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, تو ہیلپ بھی بہت مشکل سے ہوتی ہے کیونکہ وہ پھر سارا ٹیکسٹ کر کے بھیجنا پڑتا ہے نا.
تو آپ کے اور بہن بھائی بھی اسی طرح پڑھ رہے ہیں آن لائن, تو گھر میں پھر شور زیادہ ہوتا ہے تو پرابلم تو نہیں پیش آتا کہ پڑھائی میں کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی؟
جی, ڈسٹریکشن بہت ہیں, جیسے اب جس گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو شور مچاتے ہیں, پھر پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, جیسے ہر کسی کی ڈفرینٹ ٹائم زونز ہیں نا. اب جب ٹیچر اسائنمنٹ پوسٹ کرتی ہیں اس وقت تو ہماری رات ہوتی ہے, پھر ہم لوگ اپنے دن میں کام کرتے ہیں, اور کبھی کبھی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں, کوئی पेरेंट्स का कोई बुला रहे होते हैं कभी नीचे, कभी खाने के लिए बुला रहे होते हैं, कभी कोई काम के लिए बुला रहे होते हैं, तो अपने लिए टाइम निकालना काम करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
बेहद शुक्रिया हमना नाज, इस्लामाबाद से आप हमारे साथ टेलीफोन पर थी और आप नेपाल के एक स्कूल में, अमेरिकन स्कूल में आप पढ़ती हैं और इस वक्त पाकिस्तान आई हुई हैं, और लेकिन आपकी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू है नेपाल के स्कूल में। तो आप इस्लामाबाद में बैठकर नेपाल के अपने अमेरिकन स्कूल के लिए ऑनलाइन पढ़ रही हैं, और बेहद शुक्रिया आपने हमना नाज हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील और आप सुन रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम। और अब हम आपको लिए चलते हैं कनाडा, जहाँ एक स्टूडेंट है छोटी सी, वो भी ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रही हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उनका क्या मसला उनको पेश आता है जब वो ऑनलाइन पढ़ रही हैं। तो नाम है इनका सिला। सिला, आप कौन सी क्लास में हैं?
मैं ग्रेड 5 में हूँ।
तो कुछ बताएं कि ये आप ऑनलाइन जो पढ़ रही हैं तो कैसे पढ़ रही हैं?
मैं अपने बाबा की हेल्प से कर रही हूँ।
अच्छा, तो कैसे पढ़ती हैं आप? लैपटॉप पर कोई कौन सा क्लास होती है? जूम से पढ़ती हैं, किससे पढ़ती हैं आप?
खुद पढ़ती हूँ। असाइनमेंट्स आती हैं, वो लिखना होता है उसमें। असाइनमेंट टीचर पोस्ट करती हैं मेरे गूगल क्लासरूम में और वहां से मैं करती हूँ।
तो सबसे मुश्किल रोजाना आती है असाइनमेंट्स?
रोजाना नहीं आती, वो वन टाइम आती है मंडे, और वो सेवन आती है और एट आती है असाइनमेंट आती है, और वो बहुत हार्ड होती है।
तो फिर उन्हें वापस कब करके देना होता है?
संडे तक टाइम है।
अच्छा, तो फिर आप कितने घंटे में असाइनमेंट्स कर लेती हैं? 7 दिन की करती हैं फिर आप असाइनमेंट्स?
हर रोज करती हूँ मैं एक एक।
तो क्या होती है असाइनमेंट आमतौर पर?
फ्रेंच, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, रीड वर्क्स, और लाइब्रेरी भी आ जाता है, और कुछ एप्स होती हैं जो फ्रेंच में देते हैं और मैथ में भी देते हैं।
अच्छा, तो आपको कंप्यूटर पर लिखना आ जाता है करना सारा काम?
आ तो जाता है।
अच्छा, तो लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल क्या लगती है आपको?
वो टीचर मुझे आंसर नहीं देती है क्वेश्चन का जो पूछती हूँ।
किस वक्त आंसर नहीं देती वो?
अगर मैं मंडे को कुछ पूछती हूँ टीचर को, तो वो असाइनमेंट करने के बाद जब मैं सबमिट कर देती हूँ अपना वर्क, तो जब आती है क्वेश्चन। अभी तक मैंने किया तो था, उनको दिया था, मैसेज अभी नहीं आया।
तो वैसे कैसा लगता है घर में पढ़ना?
अच्छा तो लगता है, लेकिन मुझे स्कूल वर्क चाहिए होता है, क्लास में जाना होता है, क्योंकि वहाँ पर टीचर होती हैं तो वो समझाती भी हैं, और मैं अपने क्लासमेट से हेल्प भी ले सकती हूँ अपने काम के लिए।
तो ये, और इतने दिन से आप घर में हैं, तो अब दिल चाहता है कि स्कूल जाए आप?
3 मंथ से हूँ, और जब मैं हॉलीडेज आती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि घर में बैठना। मुझे स्कूल बहुत पसंद है जाना, क्योंकि स्कूल में टीचर की एक्टिविटीज होती हैं, वो क्रिएटिव से कर बताती हैं, और वो इजीली हो जाता है फिर वहाँ काम, क्योंकि वहाँ पर हेल्प मिलती है बहुत ज्यादा।
घर में कोई हेल्प नहीं मिलती ना?
घर में नहीं।
तो फिर आप क्या कहेंगे अगर मैं कहूँ कि भाई ऑनलाइन पढ़ना अच्छा है कि स्कूल में पढ़ना अच्छा है, तो आप क्या कहेंगी?
मुझे स्कूल पे पढ़ना अच्छा लगता है।
ठीक है, तो बहुत शुक्रिया सिला, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आप सुन रहे हैं हमारा खसूसी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में, जैसा कि आपको अब तक मालूम हो चुका होगा, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस बारे में कि पाकिस्तान और दुनिया भर के स्कूलों में COVID-19 के इस दौर में जबकि स्कूल बंद हैं और सारी एजुकेशन ऑनलाइन सिमट कर आ गई है, स्कूलों में क्या मसाइल पेश आ रहे हैं असातिज़ा को, क्या मसाइल पेश आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, और क्या मसाइल पेश आ रहे हैं वालिदैन को जो अपने बच्चों को घरों में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए तैयार करते हैं और उनकी मदद करते हैं, और वो मदद करते हैं जो उनको खुद भी नहीं मालूम कि कैसे मदद करनी है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कनाडा के ब्रैम्पटन पब्लिक स्कूल की एक उस्ताद, ताहिरा सैफ इनका नाम है, और क्लास 4 को ये इस वक्त पढ़ा रही हैं ऑनलाइन। पूछते हैं इनसे कि कैसी जा रही है इनकी कोशिश। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा सैफ साहिबा।
वालेकुम अस्सलाम यास्मीन, कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो कुछ बताइए कि कैसा लग रहा है, क्या इससे पहले भी जब आप लोग COVID-19 से पहले भी आपके स्कूल में कोई ऐसा सिस्टम था कि तालिब इल्मों से घरों से इंटरेक्ट किया जाए तालीम के हवाले से?
जी हाँ, पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इस काबिल समझा। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ कनाडा में गूगल क्लासरूम यूज करते हैं, जो हम काफी सालों से यूज कर रहे हैं। उसमें ये है कि आपका इंटरेक्शन पेरेंट्स से भी होता है और बच्चों से भी। हमारे सब होमवर्क, क्योंकि जो होमवर्क में मोस्टली क्लास में जो चीज टाइम बच्चे देते हैं और जो चीज रीड करनी है वो हम घर भेज देते हैं कि बच्चे उसको घर पे दोबारा रीड कर सकें। तो उसके लिए हम गूगल क्लासरूम यूज करते हैं। उसमें हम हर साइंस, मैथ, इंग्लिश सब वर्क डिफरेंट असाइनमेंट उनको अंडर गूगल क्लासरूम हम उनको भेज देते हैं, तो वो घर पे उनको रिव्यू कर सकते। ये हम लोग सितंबर से जब क्लासेस शुरू होती हैं तो साथ ही गूगल क्लासरूम में बच्चे ऐड हो जाते हैं, पेरेंट्स भी ऐड हो जाते हैं, और ये साथ के साथ चलता है हमेशा से, और ये पिछले 4-5 साल से चल रहा है।
अच्छा ठीक, तो ये तो आपको बड़ी सहूलत पहले से दस्तियाब थी कि आप कनेक्टेड थे बच्चों के साथ घरों में, और होमवर्क तो आप पहले भी दे रहे थे, लेकिन अब क्या तब्दीली आई COVID-19 के बाद? क्या सभी के पास इंटरनेट की सहूलत थी, क्या सभी के पास डिवाइसेस थी, और अगर नहीं थी तो फिर आपने क्या उनका सलूशन क्या निकाला?
कहने को हम बहुत अच्छे मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जब हमने ये इंटरनेट पे पढ़ाना शुरू किया तो 3 वीक तक हमें पता चला बहुत से बच्चों के पास डिवाइसेस नहीं है, बहुत से बच्चों के पास इंटरनेट ऐसा नहीं है जो 2 डिवाइसेस को सपोर्ट करे अगर उनके घर में 2 बच्चे हैं तो। फिर उसके लिए हमारे स्कूल बोर्ड ने सब बच्चों के हमसे नाम नंबर लिए, और फिर स्कूल की जो डिवाइसेस थी उनके लिए एक्सेस बनाया गया कि वो घर पर भी काम कर सकें। और उसके बाद प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ने जाकर बच्चों को घर में वो डिवाइसेस प्रोवाइड की, क्योंकि COVID-19 की वजह से इंटरेक्शन नहीं था। फिर प्रिंसिपल दरवाजे पे डिवाइस रखते थे डिवाइस, और बच्चे या पेरेंट्स वेव कर लेते हैं और डिवाइस ले लेते थे। इसी तरह सबको इंटरनेट कनेक्शन भी घरों पे दिए गए, और उसके बाद 3 हफ्ते के बाद हम लोग सही तरह से शुरू कर सके हो गया। अब नया जो हमने शुरू किया अभी गूगल मीट, तो अब बोर्ड ने गूगल मीट शुरू कर दिया है। तो गूगल मीट में यह है कि एवरी ट्यूसडे हम मीटिंग करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कशन उस पर कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट इस वक्त अभी बहुत मुश्किल हो रहा है टेस्ट में। कि अगर हम टेस्ट भेजते हैं तो आपको पता है कि बच्चों के पेरेंट्स, उनके ब्रदर सिस्टर वो हेल्प कर सकते हैं उनको, इसलिए अभी तक टेस्ट का हमने कुछ नहीं शुरू किया। बहुत से क्वेश्चंस हैं जो बच्चे हमें ईमेल करते हैं, फिर हम उनको वी आर गेटिंग यूज टू, जैसे वास्तविकता हमें आदत हो रही है, तो अब हम बच्चों को ईमेल पे उनके क्वेश्चन का आंसर जब देते हैं तो साथ ही अगर उनको कोई ट्रबल होती है तो फिर हम उनको गूगल मीट पे इंडिविजुअली कॉल करके तो उनसे बात करके उनका प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश।
तो क्या ये सिर्फ टेलीफोन पर होता है या स्काइप पर होता है या कंप्यूटर पर होता है, किस तरह उनसे गूगल मीट में किस तरह उनसे बात होती है?
गूगल मीट बेसिकली प्रोटेक्टेड है कि जब तक टीचर ऑन नहीं करती बच्चे उस पे नहीं जा सकते, वो लिंक टीचर के कंट्रोल में है। तो उसमें ये है कि जब हम लिंक ऑन करते हैं तो जिस बच्चे को हम, जिस बच्चे से बात करना चाहते हैं तो उसी बच्चे का लिंक हम ऑन करेंगे, बाकी सबको क्लोज कर देते हैं। तो वो बच्चा जो है, जैसे आज मेरी गूगल मीटिंग सब बच्चों से हुई, तो सब बच्चे गूगल मीट इज जस्ट लाइक आई थिंक आई कैन से दैट जस्ट लाइक स्काइप, लेकिन इसमें यह है कि शेयर स्क्रीन है, सब बच्चों को हम देख सकते हैं पूरी क्लास को और पूरी क्लास के बच्चे डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं।
ठीक, बच्चे क्या फील करते हैं कि टीचर जो है वो इतनी दूर है?
जैसे आज हमारी मीटिंग हुई तो बच्चे, बच्चों का मेन क्वेश्चन ये था कि हम वापस स्कूल कब जाएंगे।
बच्चे बोर हो गए।
बोर हो गए, दे मिस एवरीथिंग, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। अब उनको लग रहा है, जैसे आज मुझसे बच्चे कह रहे थे कि हम दोबारा इसी ग्रेड में जाना चाहते हैं।
अच्छा।
क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स के साथ हमने प्ले नहीं किया, अपने फ्रेंड्स के साथ हमने एंजॉय नहीं किया, तो और हमें वो जो बेसिकली जो क्लासरूम है ना, मुझे लगता है छोटे ग्रेड्स के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत बच्चे इसको इतना लाइक नहीं कर रहे, पेरेंट्स भी और बच्चे।
तो खास तौर पर कुछ क्या मुश्किलात आपको क्या पेश आ रही हैं जब आप ये ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं? क्या कमी है और क्या नहीं होना चाहिए इन क्लासेस में और क्या होना चाहिए?
जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है वो ये कि कुछ बच्चे क्लास के दौरान इतना अच्छा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हम गूगल पे देखते हैं उनका काम आता है तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि घर में बच्चे पेरेंट उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो इस वजह से काम का, मुझे लगता है जो काम बच्चे दिखा रहे हैं वो उनका काम नहीं है। तो टीचर्स के लिए बड़ा मुश्किल है कि बच्चों को इवेलुएट करना कि वो बच्चा ही कर रहा है या कोई और उसके लिए कर रहा है। और बहुत सारे बच्चे जो है वो कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, वो कर ही नहीं रहे। तो ये भी मुश्किल हो रही है कि आप इंडिविजुअली उनसे बात नहीं कर पा रहे उनसे। तीन चार पेरेंट्स ऐसे हैं जब से हमने शुरू किया है उनसे हमारा कोई रब्ता ही नहीं है।
कनाडा में आप क्या समझती हैं कि स्कूलों में फिजिकल प्रेजेंस के लिए कोई जल्द कोई इम्कान हैं?
तो नहीं, बस लगता है क्योंकि क्वेबेक में इन्होंने खोले हैं, तो क्या पता यहाँ भी बाकी सिटीज में भी आहिस्ता आहिस्ता खोल दें। लेकिन खोलने के बाद भी जो हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि माँ बाप इतनी जल्दी बच्चों को भेज देंगे। क्योंकि हमारी क्लास पोर्टेबल में है, पोर्टेबल में तो और मुश्किल है कि इतनी छोटी सी जगह पे डिस्टेंस रख के बच्चों को रखा।
तो ये मसाइल तो हैं, मसाइल हैं, और न सिर्फ ये कि इस वक्त हैं बल्कि आइंदा के लिए मजीद मसाइल भी आप समझती हैं कि सामने आएंगे, और जैसे जैसे सूरत हाल बदलेगी उसके मुताबिक ही उनके सॉल्यूशंस भी सामने आएंगे तो उनसे निपटा जाएगा। तो बेहद शुक्रिया ताहिरा सैफ, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है।
अब हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है और कर रहे हैं एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं बुनियादी तौर पर, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मैमूना सादी इनका नाम है और ये डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जो इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंस है उससे वाबस्ता है। तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैमूना सादी साहिबा।
वालेकुम अस्सलाम,
बेहद शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैमूना कुछ बताइए कि इस वक्त जो हमने जिक्र किया क्या सूरत हाल है, मेंटली क्या लोग फील कर रहे हैं, खासतौर पर बच्चे और वालदैन और असातिज़ा, जबकि वो घरों में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं?
देखिए सबकी जो है वो कंडीशन इस वक्त जो है सूरत हाल में कहूंगी कि तकरीबन एक ही जैसी है कि सब जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं और एग्रेसिव एग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। बड़ों का ये है कि बड़े थोड़ा सा कह सुन के जो है वो उस चीज को निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत मसाइल हो रहे हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। उसमें जो ज्यादा है वो यही है कि एक तो क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और सब कुछ ऑनलाइन है तो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसको इनिशियली जो है वो हम इतना ज्यादा मना करते हैं, इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करते कि स्क्रीन टाइम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि स्क्रीन टाइम इसमें बहुत ज्यादा हो रहा है इस चीज को इस वक्त रोका भी नहीं जा सकता। इसके अलावा जो है वो फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन बच्चों में बहुत ज्यादा है क्योंकि कोई किसी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी मतलब उस तरह से नहीं है जिस तरह से लॉकडाउन से पहले होती थी। क्योंकि हालात ही ऐसे कि बाहर पार्क्स में बच्चे नहीं जा सकते, या बाहर बच्चों गली मोहल्ले में बच्चे नहीं खेल सकते, या कुछ भी जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज थी, फिजिकल एक्टिविटीज, वो बहुत जो है वो कम हो गई है, उनको बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ रहा है. तो जो पेरेंट्स हैं उनके लिए इस तरह से ये चीज डिफिकल्ट हो रही है कि उनको मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट है वो डिफिकल्ट हो रही है. और सबका जो एक अपना मी टाइम होता है वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है. जैसे अगर कोई माँ है, वो शुरू में ये होता था कि बच्चे को स्कूल भेज के वो थोड़ा सा अपना जो भी है अपनी चीजें कर ली, जैसे लाइक कुकिंग कर ली आराम से, या बर्तन धो लिए, या घर साफ कर लिया. अब ये है कि बच्चों की मौजूदगी में उनको ये भी तमाम काम करने हैं, तो ये उनके लिए भी काफी फ्रस्ट्रेशन का बायस बन रही है. ये तो मोर और लेस यही फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन है जो बहुत ज्यादा रिपोर्ट भी हो रहा है. हमारे पास केसेस भी आते हैं कि बच्चा जो है वो बहुत एग्रेसिव हो रहा है, या बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, बदतमीजी कर रहा है, बात नहीं मान रहा, या इस किस्म की चीजें जो है बहुत ज्यादा हो रही है.
तो क्या आप सोल्यूशन क्या देंगी वालिदैन को जो इस वक्त बच्चों के साथ मौजूद हैं और उन्हें पढ़ा भी रहे हैं, खासतौर पर उस वक्त के उन्हें खुद भी नहीं आता कि वो किस तरह ऑनलाइन पढ़ें या बच्चों को पढ़ाएं? ये एंगल भी आप बताइए कि वालिदैन को ये मुश्किल जो पेश आ रही है कि वो बच्चों को समझा भी नहीं पा रहे जिनको कंप्यूटर के बारे में ज्यादा इल्म नहीं है.
अच्छा, ये चीज जो है वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये चीज भी एक मतलब इशू क्रिएट हो रहा है कि जिन पेरेंट्स को इतना पता नहीं है कि वो कंप्यूटर को कैसे यूज करें, या वो ऑनलाइन किस तरह से एक्सेस लें, उनको भी जो है वो बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है या कराना पड़ रहा है. लेकिन उसमें ये है कि देखिये, हर इंसान जो है वो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है ना, हम सब सीखने के अमल में. तो इसको भी मैं पेरेंट्स से यही कहूंगी कि इसको भी एक सीखने के अमल के तौर पर लें और इसको जो है वो सीख लें. और इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है. शुरू के 3-4 दफा आपको डिफिकल्टी होती है कि आप कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करें, या आप जो जिस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, जैसे जूम है, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू जो है वो हमें क्लास अरेंज करनी पड़ती है बच्चे की, या बच्चे को सुबह उठा के बैठाना पड़ता है लैपटॉप ऑन करके, या जैसे भी. तो उसको जो है वो सीखना जो है वो सबसे बड़ा एक पॉइंट है. अगर उसको सीख लिया जाए तो वो इतना बड़ा मुश्किल मरहला नहीं है. लेकिन जो है वो पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल अवॉइड करें कि हमने पूरी जिंदगी नहीं किया, अब हम क्यों करें, तो वो थोड़ा सा इस चीज पे जो है वो मैं सबको यही एडवाइस करूंगी कि थोड़ा सा इस चीज को सीखने की तरफ जाएं. क्योंकि अब जो है जनरली भी दुनिया जो है वो ऑनलाइन या सॉफ्टवेयर की तरफ ज्यादा जा रही है, रेदर कि वो फिजिकली जो है वो क्लासों में जाके पढ़ाया जाता था. अगर हम बाहर के ममालिक में देखें तो वहां तो ये चीज ज्यादा पहले से हो रही है. तो इस चीज को जो है वो अगर वो सीख लेंगे तो चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी.
इसके अलावा क्या वो इंगेज किस तरह करें बच्चों को? हर उम्र का बच्चा घर में मौजूद है, तो सबके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज वो कैसे अरेंज करें, घर का काम भी करें, खासतौर पर माएं?
देखिए, ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग पॉइंट है और चैलेंजिंग टाइम है. मैं यही कहूंगी सबके लिए, पेरेंट्स के लिए तो ज्यादा है क्योंकि उनको सब कुछ मैनेज करना है, स्पेशली मदर्स के लिए. वो जो है मदर्स जो कि घर में हैं या घर से बाहर काम करें, अपने काम भी मैनेज करें और बच्चों को भी उस तरह से लेके चलें, तो उसमें यही है कि सबसे पहले तो अपनी जो मेंटल हेल्थ है, या अपनी जो एक जिसे कहते हैं ना, अपने आप को थोड़ा सा उस चीज पे लेके चलें कि ज्यादा गुस्सा ना करें या ज्यादा एग्रेसिव ना हो. इस चीज को सोच के कि बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो रहा, अगर वो यही सोचना शुरू हो जाएंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो देखें, हर एज ग्रुप के बच्चे के लिए अलग अलग एक्टिविटी प्लान करना तो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. तो यूजुअली हम ये अपने क्लाइंट्स को या अपने पेशेंट्स जो हमारे पास पेरेंट्स वहां पे भी आते हैं, हम उनको भी यही बताते हैं कि वो जो है वो म्यूचुअल एक्टिविटीज कुछ प्लान करें. जैसे कि ड्राइंग का कोई छोटा सा कुछ प्लान कर लिया, छोटा सा इवेंट जिसमें तमाम बच्चे, जिस तरह छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, सबको बिजी रख सकते हैं. कलरिंग ऑलमोस्ट सब बच्चों को पसंद होती है, तो इस किस्म की एक्टिविटीज प्लान कर ली. फिर उसके अलावा बच्चों को अपने साथ चीजों में इन्वॉल्व करें. जैसे अगर बच्चे जो है वो इस काबिल हैं कि वो आपकी हेल्प कर सकें, तो आप उनको अपने साथ इन्वॉल्व करें। जैसे एक बच्चे को टास्क दे दिया कि आप अपना रूम साफ कर लें, इसकी डस्टिंग कर लें, एक को ये टास्क दे दिया कि वो बर्तन उठा के जो है वो किचन में रख दे, या इस किस्म की चीजें। आप जितना बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे उतना आप आसानी होगी।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैमुना सादी, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और आप हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, बुनियादी तौर पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और आप डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची से वाबस्ता हैं, उसके इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज में आप साइकोलॉजिस्ट हैं। आपका बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज का ये प्रोग्राम खत्म होता है। यास्मीन जमील को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ता